الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج سورة انبیاء ہم آیت نمبر 83 سے 112 جو اینڈ آف سورہ ہے یہاں تک انشاءاللہ کریں گے. اتنی یہ رچ سورہ ہے کہ اس کے پہ ہم اگر بہت عرصہ بھی لگا دیں تو اس کی ایک ایک آیت کے پیچھے اتنی بیک گراؤنڈ ہے، بہت زیادہ اس کا یعنی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس میں. جیسے سورت کا نام بھی الانبیاء ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انبیاء کے قصے، انبیاء کے قصے بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ نبی ہیں، کوئی اور ہمارا رول ماڈل نہیں ہے. اور انبیاء نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا رہا، وہ کن چیزوں سے گزرے، یہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے سبق حاصل کریں. جب ہم سوچتے ہیں نا کسی نیک انسان کا، یا بہت ہم جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب انسان کا، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ اس کی زندگی تو بہت ہی آسائشوں والی ہونی چاہیے، بہت ہی زبردست قسم کی یعنی عیش والی زندگی وہ گزار رہا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے، اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ہوگا. وہ تو ادھر دعا کرتا ہوگا، ادھر قبول ہو جاتی ہوگی، اور بس وہ ایک لگژریس لائف گزار رہا ہوگا. لیکن ہم آج یہ جو آگے آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کیسے ان کی آزمائش ہوئی ان کے باپ کے ذریعے، پھر لوط علیہ السلام کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کا ادریس، اور ان کا ہم آج بھی دیکھیں گے. لیکن آپ نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، پھر آپ نے دو پیغمبر جو بادشاہ رہے، داوود اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ان سچویشنز میں سے ہی کسی سچویشن سے ہم بھی گزر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہاں پر مختلف طرح سے ہر ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے. سب کے امتحان کے پرچے سب کے پاس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا امتحان دولت کا ہو، کسی کا امتحان رشتہ داروں کا ہو، کسی کا امتحان اپنی قوم والوں کا ہو، کسی کا امتحان بیماری کا ہو، مختلف قسم کے امتحان ہو سکتے ہیں، مگر ہیں سب امتحان میں. تو ہم اب کہاں سے رہنمائی لیں؟ یہ پیغمبر ہیں جن سے زندگیاں ہمارے لیے رہنمائی، اور ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، بہت کچھ سکھا دیتی ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر تو کبھی کوئی مشکل آنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ گئی تو پھر اب ہم مایوس ہو جائیں گے کہ ہم تو اتنے اچھے کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کو آتا ہے، پھر نیک لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا. یعنی جیسے ایمان اور نیکی میں درجات ہیں، اسی طرح امتحان کے بھی درجات ہیں. کسی کا امتحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنا نیک ہے. تو ہر ایک انسان کا امتحان اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے. اگر دین میں وہ مضبوط ہے تو امتحان بھی اس مطابق ہوتا ہے. اگر دیکھیں ایک بندہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کو وہ اب کلاس ون کا تو نہیں پیپر دے دیتے نا، اس کو اس کے مطابق دیتے ہیں. اب آپ کہیں نہیں جی بہت مشکل، اس کو کیوں دیا، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ویلیو ہے، تبھی تو اس کو زیادہ سخت دیا گیا، کیونکہ وہ اسی کے قابل ہے. وہ بڑا ہے تو اس کے لیے بڑا امتحان ہے. جو چھوٹے چھوٹے بےچارے ایلیمنٹری اسکول کے بچے ہیں، ان کو اس کے مطابق نمبر لکھنے کو دے دیے، الفابیٹ لکھنے کو دے دیے، تو چھوٹے چھوٹے امتحان، وہ ہیں ہی چھوٹے نا. تو ہم میں سے بھی جو چھوٹے لوگ ہیں، उनके छोटे इम्तिहान, जो बड़े बड़े लोग थे ना उनके बड़े इम्तिहान थे, और आज भी लोगों पर इम्तिहान आते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर हम क्या कहते हैं आगे से, लो हम ही रह गए इम्तिहानों के लिए, हमारा घर ही देख लिया है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला ने इम्तिहान डालने के लिए। हालांकि देखा जाए तो अंबिया देखें कैसे, ये फिर इम्तिहान में फेलियर की निशानी है अगर इंसान इस तरह की बातें करने लगे, जबकि अंबिया को देखें वो कैसे थे। और आज हम सबसे पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में देखेंगे, जिनके सबर मशहूर है कि वो कितने सबर वाले थे। तो जब इनकी आजमाइश शुरू हुई तो क्या हुआ, इनके घर वाले बाज कहते हैं मर गए, बाज कहते हैं कि नहीं उनकी बीमारी की वजह से उनसे दूर कर दिए गए, माल सारा खत्म हो गया। वो पता है अल्लाह माफ करे, बाज दफा ऐसी बीमारियां होती हैं कि सारा माल भी उसके ऊपर लग जाता है, खर्च हो जाता है, इंसान मकरूज हो जाता है। तो इनके हाथ में कोई चीज ही नहीं रही, फिर भी अल्लाह के जिक्र में ये कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। कहने लगे ऐ सारे पालने वालों के पालने वाले, तूने मेरे ऊपर बड़े एहसानात किए। अब इंसानात कहाँ किसको याद रहते हैं जब उसके ऊपर बीमारियां मुश्किल है, लेकिन वो उस वक्त बीमारी में कहते हैं अल्लाह तूने मेरे ऊपर बड़े एहसानात किए, मुझे माल दिया, मुझे औलाद दी, उस वक्त मेरा दिल उनमें मशगूल रहता था, अब तूने सब कुछ ले लिया, मेरे दिल को सारी फिक्रों से ही पाक कर दी, अब मेरे दिल में और तेरे दरमियान कोई चीज हायल ही नहीं। अगर मेरा दुश्मन इबलीस जो है तेरी इस मेहरबानी को जान लेता, क्या कह रहे, इस मेहरबानी को जान लेता, ये मेहरबानी है, ये वो उसको मेहरबानी बता रहे हैं बीमारी को, तो वो जान लेता तो वो मुझ पे बहुत हसद करता। तो इबलीस ने जब ये बात सुनी तो वो जल भुन गया। तो इनकी दुआओं में एक ये भी दुआ थी, अल्लाह तूने जब मुझे मालदार किया हुआ था, औलाद दी हुई थी, घर वाले दिए गए थे, अहल वाला बना रखा था, तो तुझे पता है उस वक्त भी मैंने कभी गरूर नहीं किया था, ना कभी किसी पे जुल्म किया था, मेरे परवरदिगार तुझ पे रोशन है कि मेरा नरम और गरम बिस्तर तैयार होता था और मैं फिर भी रातों को तेरी इबादत में गुजारता था, और अपने नफ्स को मैं डांटा करता था कि तू इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तेरी रजामंदी की मैं बस चाहत रखू और मैं अपनी राहत और आराम छोड़ दिया करता था, यानी इबादत में। कहा जाता है 18 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 2 साल नहीं, 18 साल ये बीमारी में मुबतला रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, बड़े लोग उनकी बड़ी बातें, बनी इसराइल का जो कूड़ा फेंकने की जगह थी वहां पे उन्होंने आपको डाल दिया था। बताया जाता है कि ऐसी वो बीमारी थी कि जैसे कोढ़ की बीमारी हो, बदन में कीड़े पड़ गए, सारा गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां रह गई थी, स्किन रह गई थी, और आप राख में पड़े रहते थे ना। अब देखे ना कि फिजिकली भी ये अजियत, और फिर दूसरे के घर वाले भी चले गए, जब नेमतों से कोई इंसान नीचे आता है ना, यानी नेमत किसी वक्त किसी ने नेमत देखी ही ना हो ना, तो वो फिर अलग बात है, फिर भी सबर आसान, लेकिन जिसके पास बड़ी ही नेमतें थी, एकदम बैंकरप्ट हो गए, एकदम सब कुछ लुट गया, एकदम सब खत्म हो गया, उनके लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत नेमत देखी होती है, उनके लिए ये सहना ही बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि हम कैसे वहां से यहाँ आ गए, हम कैसे, हम तो इतने ऊपर थे, तो वो ही उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और इनकी बीवी इनके पास सिर्फ होती थी जो इनकी खिदमत किया करती थी। जब ज्यादा जमाना गुजर गया तो एक दिन अर्ज करने लगी है अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो इस मुसीबत को हम पे से टाल दे। तो आप फरमाते हैं सुनो, 70 बरस तक अल्लाह ताला ने मुझे सेहत आफियत में रखा, अगर 70 साल तक इस हालत में भी रहूं तो सबर करूं तो ये भी कम है। इस पे बीवी कांप उठी और शहर में जाती थी, लोगों के घरों के काम करती थी, सोचें आप, लोगों के घरों में काम करती थी, वो जो एक अमीर औरत होगी एक वक्त, जिसके आगे नौकर आता है तफसीरों के अंदर के इनके इतने माल मवेशी थे, भेड़ें पता नहीं हजारों थी, फिर इतनी और चीजें थी, फिर सवारियां, फिर घर, फिर नौकर चाकर, इतना कुछ था। वो औरत जो एक मलका की तरह रहती थी, अब वो घरों के काम कर रही, तो जो घरों से जो कुछ मिलता था वो वो ले आती थी इनके पास लाके और इनको खिलाती थी। एक दफा इनकी बीवी अर्ज करती है कि अल्लाह से दुआ करें, लेकिन आप नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक दिन बनी इसराइल के कुछ लोग आपके पास से निकले और आपको देख के कहने लगे, इस शख्स को ये तकलीफ जरूर किसी ना किसी गुनाह की वजह से ही मिली है, ये इसके पर सजा है। अल्लाह अकबर, आप खुद सोचें, एक बंदा ना तकलीफ में होता है ना, फिर लोगों की बातें, चुभने वाली बातें जब होती है तो उसका गम या उसका दुख कई गुना बढ़ जाता है। और कहते हैं कि एक दिन कोई लोग मिलने के लिए इनको आए, लेकिन इनके जिस्म की बदबू की वजह से करीब नहीं आ सके, दूर ही खड़े होकर एक दूसरे से कहने लगे, अगर इसमें कोई खैर होती तो भला अल्लाह ताला इसको इसमें मुबतला करता, इस मुसीबत में डालता। वो बाज दफा ना लोग किसी को मुश्किल में देखते हैं ना तो ऐसी ही बातें करने लगते हैं, कभी ये नहीं सोचते हो सकता है अल्लाह ने इसके दर्जे बुलंद करने, कभी ये नहीं सोचते देखिए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के प्यारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर किस तरह की तकलीफ गुजरी, वो उल्टा बातें बनाने लगते, देख लो, देखो जरूर इसने कुछ किया होगा। हाँ बस ये फिर उन लोगों को याद आने लगता कि ये फलां चीज करती थी, ये तो ऐसे करती थी, फिर हम ये बातें करने लगते। क्यों नहीं दूसरे के ऊपर रहम खा लेते कि वो एक बेचारा पहले ही परेशान, पहले ही मुसीबत में, पहले ही मुश्किल में, और हम कहीं से ढूंढने लगते हैं कि इसका कौन सा वो गुनाह होगा जिसकी इसको ये सजा मिल रही है। अपने ऊपर आने वाली मुश्किल को तो नहीं कभी ऐसे समझते, दूसरे को मुश्किल में देख के हमें उसके गुनाह ढूंढने का फिक्र हो जाती है, वो तलाश करने लगते हैं। अल्लाह अकबर, एक दफा कोई लोग इनके पास आए मिलने के लिए इनको, तो उन्होंने जब देखा कि इतनी ये मुश्किल में है, तो इनके पास, इन दोस्तों के पास ना शैतान आया और इनसे कहा कि कुछ शराब अपने साथ ले जाओ और इनको पिला देना, इससे इनको शिफा होगी। तो ये जब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनको देख के वो दोस्त जो थे खैर ख्वाह थे, लेकिन उनके आंसू निकल आए, रोने लगे, पूछा तुम कौन हो, उन्होंने याद दिलाया कि हम वो फलां फलां, तो बड़े खुश हुए, उनको मरहबा कहा। तो वो कहने लगे, आप शायद कुछ छुपाते होंगे और जाहिर के इसके खिलाफ करते होंगे, तो आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठा के फरमाया, अल्लाह तू खूब जानता है कि मैं क्या छुपाता था और क्या जाहिर करता। यानी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप, मतलब है कि जिसको कहते ना एक मुनाफिकत के, कुछ जाहिर कुछ करते हैं और अंदर से कुछ और। तो कहते हैं, अल्लाह तू जानता है कि मैं क्या छुपाता था और क्या जाहिर करता था, मेरे रब ने मुझे इसमें मुब्तिला किया ताकि वो देखे कि मैं सबर करता हूँ या बेसब्र। वो कहने लगे, अच्छा चले हम आपके लिए ना कोई दवाई लेकर आए, आप उसको पी लें, इसमें शिफा है, ये शराब है, हम अपने शहर से लेकर आए। तो ये सुन के गुस्से में आ गए, फरमाने लगे, तुम्हें शैतान लाया, तो तुमसे कलाम करना, तुम्हारा खाना पीना ये सब मेरे पर हराम, मैं नहीं ये लूंगा। तो शैतान इन तबीब के, यानी एक हकीम के तौर पे मिला और इनको कहने लगा इनकी बीवी से कि तेरा खामन सख्त तकलीफ में, मर्ज पे मुद्दतें गुजर गई, तुम उनको समझाओ फलां कबीले के बुत के ऊपर जाके एक मक्खी मार दे, शिफा हो जाएगी। तो जब वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गई और उनको ये बताया तो उन्होंने कहा भाई शैतान था। और वाकई आप नोटिस करिएगा कि जब कोई मुश्किल आती है ना, इंसान कुछ देर दुआ करता है तो उसके बाद शैतान हमारे दिमाग में क्या डालता है, किसी के रूप में आ जाता है। जैसे ये इन दो बंदों के पास आया और उनको कहा ये शराब ले जाके पिला दो, इसी तरह किसी इंसान को जाके कहता जाओ इसको जाके कहो। और ये आप देखिएगा कि फिर इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलने लगती हैं कहीं ना कहीं से, और फलां जगह चले जाए, वहां पे सुना है हर एक की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वहां पे धागा बांध है, वहां पे चादर चढ़ाए, वहां पे ये कर दे, आप देखेंगे आपकी मुराद भी ऐसे पूरी होगी, फलां फलां के साथ भी ये हुआ, फलां के साथ भी। यानी शैतान कैसे रूप धार के आता है, इंसान को कैसे गुमराह करता है। और वो डेस्परेट इंसान जो अब इस वक्त एक मुश्किल में है, वो कहता है मैं किसी तरह इससे निकल जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो तैयार हो जाता है, जबकि वो तौहीद के ऊपर चलने वाला होता है, वो उस वक्त खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं अब मैंने निकलना तो है, कोई बात नहीं है, ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े कर लूं, यही तो इम्तिहान है उस वक्त। इसी वक्त तो अल्लाह ताला देखता है कि आप कितने साबित रहते हैं कि मुझे मिलना है तो इसी दर से मिलना, उस वक्त आप कितने गलत कामों से दूर रहते हैं। जी फलां है वो कहते हैं कि हर काम हो जाएगा, पता नहीं कितने दिन में हो जाएगा, पता नहीं 24 घंटों में ही कर देते हैं, अल्लाह माफ करे उनको, इतना ही अगर उनके पास अल्लाह ताला माफ करे कुदरत है तो अपने काम क्यों नहीं बना लेते, क्यों अखबारों में इश्तिहार देते हैं, क्यों टीवी पे इश्तिहार देते हैं कि हम बस इतनी देर में आपका काम हो जाएगा, हर काम ही हो जाएगा, तो मोहताज इतने हैं कि बेचारे पैसे दे के इश्तिहार दे रहे, और हम देखने वाले सोचते हैं भाई इनके पास चले जाते हैं, फिर बताने वाले भी वैसे ही हमारे पास आ जाते हैं। अब एक नया काम जो मैंने देखा है वो ये कि लोग वहां पे हरम में भी जाके ऐसी चीजें करते हैं, नाम लिख लेते हैं किसी का, पता नहीं कि जिनको जिन्होंने भी उनको दुआओं के लिए शायद कहा होगा या क्या किया होगा, और ये बहुत कॉमन है वहां पे, कागज के ऊपर उसका नाम लिख देते हैं, फिर उसको काबा की तरफ करते हैं और फिर तस्वीरें खींचते हैं, फिर दूसरा कागज उठाते हैं फिर काबा के सामने करते हैं फिर उससे उसकी तस्वीर खींचते हैं। किसी ने बताया कि किसने कहा है कि आप काबा पे जाके फलां का जिसका भी आपने काम करना उसका नाम लिखें, हाथ से ऐसे ही उंगली से नाम लिखे वो काम हो जाएगा, ये कहां से शैतान देखो कि इंसानों के दिमाग में डालता है, कहां कहां से चीजें, कैसी कैसी चीजें डालता है, और वो डेस्परेट इंसान जो बस तकलीफ से निकलना चाहता है वो कहता है कर जाऊं मैं, अब ये भी बाद में देखी जाएगी, बस मैं इससे निकल जाऊं, काम तो अल्लाह ने ही करना है, उसके बताए हुए तरीके छोड़ के करोगे तो कैसे वो काम होगा। लेकिन इम्तिहान होता है ना इंसान का, देखें अय्यूब अलैह सलाम इतनी बीमारी में है, और 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, बंदा कहता है बस अब तो मेरी सुनी ही नहीं जा रही, इंसान एकदम जल्दबाज है ना तो बेसब्र हो जाता है, और यही तो सब्र है, यहीं पे तो अल्लाह आजमा लेता है। आप ये देखिए उन्होंने किसी और की तरफ रजू नहीं किया कि अल्लाह को छोड़ के अब मैं किसी और के पास चला जाऊं, जैसे हम करते हैं, और उन्होंने ये भी नहीं किया कि अपने हालात से नाराज हो जाएं, अल्लाह ताला से नाराज हो जाएं कि मेरे ऊपर ये क्यों हालात डाले, मैं तो इतना नेक था, मैंने क्या ऐसा किया, मेरा क्या ऐसा गुनाह हो गया, ये भी नहीं किया जो कि हम बहुत कॉमनली करते हैं, और ऐसे हालात में भी उनका यकीन है कि अल्लाह ताला ही मुझे देगा, मेरे हालात बदलेगा। तो जब इतनी लोगों से ऐसी बातें सुनी ना, अल्लाह हू अकबर, तो तब ये अल्लाह से दुआ मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्यूब अलैहि सलाम 18 साल तक बलाओं में घिरे रहे, फिर इनके दो दोस्तों के आने का और बदगुमानी करने का जिक्र है, जिसके जवाब में आपने फरमाया कि जो उन्होंने कहा ना कि ये जरूर इसने कोई गुनाह ही किया होगा इसलिए इसके ऊपर ये मुसीबत आई, तो अय्यूब अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरा तो हाल ये था, मैं रास्ते में जा रहा होता था ना, दो लोगों को देखता था झगड़ते हुए, तो उनमें से किसी को कसम खाते हुए सुन लेता तो घर आके उसकी तरफ से कफारा दे देता, कि ऐसा ना हो कि उसने अल्लाह ताला का नाम झूठी कसम पे ले लिया, नाहक ले लिया। और इतनी इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि इतने बीमारी से निढाल थे, जिसको कहते हैं ना बेड रिडन, वो थे कि इनकी बीवी हाथ पकड़ के इनको उठाती थी बाथरूम के लिए, इतनी ज्यादा मुश्किल हालत में थी। और तब जब लोगों ने ऐसे ताने दिए ना, तो फिर कहते हैं इतना दार बहु, जब उसने पुकारा रब को, तो पुकारना रब को ही है, यहीं पे तो अल्लाह ताला देखता है कि अब कब तक मेरे दर पे बैठा रहता है, कहना है कि अल्लाह मैं तो तेरे दर से उठ ही नहीं सकता, अल्लाह ताला मैंने लेना है तो तेरे दर से ही लेना, मुझे नहीं कहीं और जाना, कोई कितना भी कहता रहे कि वो दाता है, वो गंज बख्श है, वो अजमेर है, वो पता नहीं क्या गौस है, वो फलां है, नहीं अल्लाह मैंने तो तुझसे ही लेना, तूने ही देना है। तो शैतान आता ही उन हालात में है जब इंसान के अंदर ना बहुत बेचैनी हो जाती है, बहुत बेचैनी कि उसको किसी कल चैन नहीं आता, तभी तो शैतान का वार चलता है, लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना वो टस से मस नहीं होते, वो समझ जाते हैं ये शैतानी बातें, मेरा काम तो मेरे रब ने ही करना, कहते हैं इतनी इनकी प्यारी दुआ है ना। और ये दुआ मैंने आजमा के देखी भी कि इस दुआ के अंदर कितनी पावर है। और दुआ में मांगा कुछ भी नहीं है, सुभान अल्लाह, सिर्फ अपने हालात को बताया कि रब्बी अन्नी मस्सनी अदुरु, ए मेरे रब मुझे तो तकलीफ ने छू लिया है। ये नहीं कि हाय मैं तो सारा ही तकलीफ के अंदर ही हूं, मारे गए लुटे गए फलाओ, नहीं मुझे छुआ है बस तकलीफ। वो कहते हैं ना कि वाकई उनको फिर ये बात नहीं थी, सिर्फ उनके दिल की बात थी कि अगर 70 साल नेमतों में अल्लाह ने मुझे रखा तो 70 साल भी वो मुझे अगर तकलीफ में रखे तो तब भी नहीं, कोई कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ ने छू लिया, छुआ है बस। वाहिम, और तू तो सारे रहम करने वालों में सबसे ज्यादा ये अल्लाह रहम करने वाला। मैं तकलीफ में हूं और तू रहम करने वाला, एक बंदे की हालत और एक तेरे रब तेरी शान, बस ये बात है। अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, अल्लाह कुछ भी नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। के इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे रखते हैं, अल्लाह मेरा ये मसला है और मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह मैं तकलीफ में हूं बस। वो तू तो रहमतों वाला है मेरे रब, तू तो रहमतों वाला है, रहम की इंतहा तेरे पास ही है, तो बस इतनी दुआ की है। और आप इस दुआ को आजमा के देखिएगा। ऐसे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपना शिकवा, मैं अपनी शिकायत अपने अल्लाह के आगे ही रखता हूँ, बात करनी है तो अल्लाह से करें, क्योंकि इंसान ना हमारे मसाइल हल कर सकते, उनके पास कोई दवा नहीं है किसी दर्द की भी, सुन सकते हैं वो लेकिन उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। क्यों ना उसको सुनाए जिसके हाथ में सब कुछ, जिस दर से सब कुछ मिलना है। तो मांगा कुछ नहीं, बस अपनी कंडीशन बता दी और उसको उसकी रहमत का वास्ता दे दिया। ये हमें सिखाती है कि कैसे मांगना है अल्लाह से। अगर ये पढ़ के भी अल्लाह से मांगना ही ना सीखा तो क्या सीखा, फिर कोई बता देगा कि फलानी के वास्ते से मांगो, फलानी के सदके से मांगो, फलानी के उससे मांगो तब पूरी होंगी, उनकी बातें ज्यादा अच्छी हैं। कुरान आपको ये सिखाता है, आप उसको नहीं देखते, फलाने ने बता दिया, फलाने ने ये कह दिया, क्यों सुनते उनकी बात, कितनी ऑथेंटिक है उनकी बातें। और रब बता रहा है कि फस्त जब ना लहू, उस फौरी उनकी दुआ कबूल कर ली अल्लाह ताला, ऐसे हो गए कि बिल्कुल ठीक ठाक, कि यानी अल्लाह ताला ने बता दिया उनको, वही भेजी, इस पानी से आप नहा भी लें पी भी लें इसको, अब भले चंगे ठीक होके बैठ गए, तो बीवी आई हूं पहचाना ही नहीं, तो कहने लगी है अल्लाह के बदले ही आप एक बीमार बेकस बेबस आदमी था, तुम्हें पता है वो कहाँ है, कहीं उनको भेड़िया ना खा गया हो, कहीं कुत्ते ना ले गए। तब फरमाया नहीं, वो बीमार अयूब मैं ही हूं। बीवी कहने लगी मुझे दुखी औरत से क्यों मजाक करता है, फरमाया नहीं मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने खोल दिया जो भी उसको था तकलीफ में से, जो बीमारी थी वो सॉरी दूर कर दी, खोल दिया। देखिए सुभान अल्लाह, ऐसे जैसे कि ना अंधेरा हो, वो अंधेरा छट गया, जैसे अब बादल बहुत सारे हो ना और वो छट जाए तो अंदर से रोशनी आने लगती। तो अल्लाह ने तकलीफ के वो जो गम के बादल थे वो दूर कर दिए, आते ही ना हो अहला हो, और अल्लाह ताला ने उनको अहल भी उनको वापस कर दी, वो मिथला हो माँ, उनकी माँ ने तो और दे दिए, इतने दे दिए कि वो बाज कहते हैं कि उनके जो पिछले आले खाना जो बच्चे थे मर गए थे, अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया, बाज कहते हैं कि नहीं उनको लौटा दिया, बच्चों के बच्चे भी दे दिए, इनकी उम्र बहुत लंबी हुई और 100 साल से भी ऊपर, उन्होंने बच्चों के बच्चे भी देखे। रहमत अम्मी ने दी ना, रहमत हमारे पास है, उन्होंने रहमत का वास्ता दिया था ना अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अल्लाह की रहमत निचावर होने लगती है उसकी बारिश होती है, तो फिर तो इंसान आसूदा हो जाता है, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि तो अल्लाह की रहमत की वसत का अंदाजा ही हम नहीं कर सकते कि कितनी वसत है, सुभान अल्लाह। वज़िक्रा, ये नसीहत है लिल आबिदीन, और रहती दुनिया वालों सुन लो, ये इबादत करने वालों के लिए जो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह ही के आगे झुकने वाले, उनके लिए बड़ी नसीहत है इस बात। सुभान अल्लाह, बड़ा कुछ सीखने को है, वक्त नहीं इतना होता, लेकिन ये आयतें वो हैं जिनके ऊपर पूरे एक एक लेक्चर हो सकते हैं, इतनी खूबसूरत है। इनसे आगे दिल करता है कि इनसे आगे चले ही ना। और जो दूर था ना, उनको तकलीफ पहुंची, सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, लोगों की बातों की भी तकलीफ है, सब कुछ खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ घर में रहते थे, कहाँ होमलेस हो गए, बीमारी भी है। कहते हैं कि सिर्फ जुबान ठीक थी और अकल समझ ठीक थी, जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, पड़े पड़े वहां अल्लाह हू अकबर। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है इस तरह से बेड रिडन हो और ये हालत हो गई हो जिस सबकी? हाय, लोग तो घिन खाने लगते और लोग तो बातें बनाने लगते। यही हुआ था, जब भी किसी के ऊपर बातें बनाने लगे ना, शैतान जेन में ये बात डाले ना, इसने तो पता नहीं क्या किया होगा, अल्लाह जाने पता नहीं किस तरह इसका कोई गुनाह ही इससे हुआ होगा, जो ऐसी फौरन ये याद कर ले कि अल्लाह के बंदे अय्यूब थे, उनके बारे में लोग बातें करते थे, अल्लाह ताला ने कैसी उनकी तारीफ फरमाई कुरान में। मत किसी के बारे में ऐसा सोचे, पता नहीं अल्लाह उसके कितने दर्जे बुलंद कर रहा है, आपको क्या पता। वो तो कहते रहते थे अल्लाह ने मुझे दिया था, अल्लाह ने मुझसे ले लिया, उसके लिए सारी तारीफें हैं, सारी पाकियां। तो जब तकलीफ के दिन आते हैं ना, तो ये भी सोचना चाहिए अपने ऊपर तकलीफ आ जाए तो ये जो रोना धोना, गिले शिकवे, जसा फसा, बस बेसब्रियां, ये अच्छे दिनों का इंतजार, ये भी इबादत है, इसमें भी सवाब है कि इस अच्छे दिन जरूर आएंगे, ये अल्लाह से उम्मीद है। तो वो भी मायूस नहीं हुए कि अब क्या हो सकता है, इतने साल डॉक्टरों ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता इसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, इसको ले जाओ घर, अब कुछ नहीं होना, मायूस नहीं, मायूस ही नहीं। और इस्माइल और इदरीस और जिलकिफल, ये भी अल्लाह के पैगंबर है, और इनकी हम पढ़ चुके हैं, इस्माइल अलैहि सलाम को कौन नहीं जानता, इदरीस अलैहि सलाम जिन्होंने सबसे पहले जो ये सुई को उसके साथ सीने का शुरू किया था, और फिर इन्होंने एस्ट्रोनॉमी का इल्म इन्होंने वो शुरू किया था, फिर इस तरह जिल किफल है, दी वाला किफल, नसीब, नसीबों वाला, सुभान अल्लाह इतना प्यारा नाम। तो ये भी अल्लाह के एक पैगम्बर है, कहा जाता है इलियास अलैहि सलाम का ही दूसरा नाम है, वल्लाह हो आलम। बाज ने कहा कि नहीं ये तो अल्लाह के कोई वली थे, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए पैगम्बरों के अंदर इनका जिक्र है। वो जो किफल नामी एक बनी इसराइल का बंदा था, उससे लोगों ने कंफ्यूज हुए, हालांकि वो हदीस भी सनदन ज़ईफ़ है, जो किफल नाम का बंदा था। और दूसरा ये है कि उसका नाम किफल था, ये दुल किफल है, ठीक है। कुल्लु मिन सबिरीन, सब के सब सबर करने वालों में से थे। इस्माइल अलैहि सलाम का सबर आपको नहीं पता, देखिए जब बाप उंगली लगा के लेकर जा रहे हैं, सबर कितना था, वो हौसला क्या होगा, हौसला बाप का हौसला तो है ही है, उस बच्चे का हौसला क्या होगा जिसके लिए बाप लेकर जा रहा है, और बच्चे को पता है कि पिकनिक पे नहीं ले जा रहा, खिलौने दिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा, मुझे जिबा करने के लिए लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। वअदखलनाहुम फी रहमतिना, और हमने दाखिल किया उनको अपनी रहमत में, सबको अपनी रहमत में ले लिया, सबका बताया वो सब्र करने वाला। तो सबके लिए क्या लेसन है इसमें कि मुश्किलें आती हैं तो सब्र। इदरीस अलैहि सलाम का बहुत ज्यादा हाल हमें नहीं पता चलता, और जुल्किफिल का भी बहुत ज्यादा नहीं पता चलता, मगर ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो फरमा दिया कि सब्र करने वाले थे, तो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगियों में भी सब्र के मराहिल आए। ये सारे सबर वाले अब पैगंबर हैं जिनकी बात हो रही, और सबने सबर करके दिखाया। सबर मुश्किल काम होता है, लेकिन इसका अजर बहुत ज्यादा है। सबर की जो अजर है वो इतना बड़ा है कि कयामत के दिन जब लोग देखेंगे ना सबर करने वालों का अंजाम, तो वो दुआएं करें, वो ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से तोड़ काट दी जाती और वो सबर करते, और उनको भी यही दर्जात मिलते। وأدخلناهم في رحمتنا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا. انہم من الصالحین، یقیناً وہ سب صالح لوگ تھے. نیک لوگ تھے. وذنون، اور ذنون، نون والے، مچھلی والے، نون مچھلی، اور صاحب الحوت بھی انہی کا لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیے. لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، کہ دیکھیں جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو نک نیم دیے جاتے ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذنون، صاحب الحوت، یہ زیادہ بیان فرمایا ہے یونس سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا غضبناک ہو کر. آپ کو پتا ہے جب یونس علیہ السلام نکلے تھے اپنی بستی سے غضبناک ہو کے، کس پہ؟ اپنے لوگوں پہ، کہ بات کیوں نہیں سن رہے. اور ایک دو دن میں نہیں، تبلیغ کی ان کو اور ان کو بلایا اللہ کی طرف، لیکن وہ اپنی مخالفت میں اڑے رہے اور انہوں نے مان کے نہ دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی کہ اب ان کا وقت قریب ہے. یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، لیکن صرف اتنی سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے بغیر انہوں نے بستی چھوڑ دی. آپ دیکھیں انبیاء کی گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے، مگر ان کا بیسٹ لیول ایک ہوتا ہے نا، بیسٹ ایکسلنس سے ذرا سا نیچے جو لیول ہے وہ بھی خطا ہی سمجھی جاتی ہے. ایک بیسٹ کا لیول ہونا ہے، اس سے نیچے کا لیول ہمارے لیے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ان کے لیے، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبے بہت اونچے ہوتے، ان کے لیے وہ بھی ان کے شان کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اس پہ بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے فرما دی تک میں نہیں شہد کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتار دی. عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے تیوری چڑھائی تھی، آبا صاحب اتب اللہ اتار دی. تو وہ عام کوئی بندہ کرے تو وہ کوئی مسئلہ مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے. تو ان کے وہاں سے نکلنا کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن ان کی شان کے لائق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی. آگے کشتی کھڑی بھی تھی، اس میں بیٹھ گئے، کشتی ڈولنے لگی، طوفان میں پھنس گئی. جس وقت کے ان لوگوں نے پھر کورا ڈالا اور یہ سوچا کہ کسی ایک کو تو نہیں سمندر میں کودنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ یہ کشتی تو ڈوب جائے گی. جب کورا ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام. اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں. اے اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی بات کرانی ہوتی ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں اتفاق سے ان کا نام نکل آیا. نہیں، اتفاق سے نہیں نکلا، انہی کا نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا تھا. سیکنڈ ٹائم ڈالا، تھرڈ ٹائم ڈالا. وہ تو جانتے تھے یونس علیہ السلام اپنے لوگوں میں بڑے نیک اور صالح سمجھے جاتے تھے، بہت اچھی شہرت تھی. نہیں چاہتے تھے کہ یونس علیہ السلام کو ڈالیں سمندر میں. تب تو یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کود گئے سمندر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوت کو، حوت کیا تھی، کوئی ویل مچھلی تھی بہت بڑی، اس کو حکم دیا کہ ان کو نگل جانا ہے، لیکن ذرا بھی تکلیف نہ ہو ان کو. انما العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی. اللہ اکبر. تو پھر فظننا ان لن نقدر علیہ، اس نے سمجھا تھا کہ ہم ہرگز اس پہ قدرت نہیں پا سکتے. اچھا، اب یہ اس کا ترجمہ ہم ایسے نہ کریں تو ہم اس بہتر ہے کہ یہ کہیں کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے یا اس کو سزا نہیں دیں گے اس کو. اس لیے کہ قدر، رزق کے بھی قدر کرنے میں تنگی کا معنی ہے نا. قدرہ رزق ہو، جب آتا ہے اس کی رزق کے اندر تنگی، تو یعنی ان کو یہ تھا کہ اس کے اوپر میری پوچھ نہیں ہوگی، میری پکڑ نہیں ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ ان کو یہ تھا، اللہ کے پیغمبروں کے کیسے وہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ قدرت نہیں ہے، ایسے تو کبھی ہو نہیں سکتا. तो उन वो तो पता है हमको, लेकिन उनको ये गुमान था कि मेरी इस बात के ऊपर मुझे कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, इसलिए वो निकले थे। फनादा फिर जुलुमात, तो उन्होंने अंधेरों में पुकारा। अंधेरा जुलमत एक अंधेरा होता है, जुलुमात है, अंधेरे ही अंधेरे जमा है, एक नहीं था अंधेरा, कई अंधेरे थे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्ला। अंधेरा इटसेल्फ जो है इंसान को घबरा देता है, और कहाँ मछली के पेट का अंधेरा, पानी की गहराई में, कहते हैं वो जाके समंदर के नीचे बिल्कुल तह में जाके बैठ गई मछली, पानियों के अंधेरे, रात के अंधेरे, बादलों के अंधेरे, अंधेरा अंधेरे पे अंधेरे, अंधेरे पे अंधेरे, लेकिन उनके दिल पे अंधेरा नहीं छाया। अल्लाह अकबर, दिल रोशन था इसीलिए पुकारा, अल्लाह इलाह इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिन सालिमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे मछली के पेट से निकाल, आए अंधेरे, आए घबराहट, आए मुश्किल, आए मुसीबत, नहीं उस वक्त झसा फसा नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, बेसब्रियां नहीं, मछली के पेट में ही भागने दौड़ने लगते और कहते कि हाय मुझे निकाल, हाय ये कौन सा कैद खाना। ऐसा भी कभी किसी ने कैद खाना देखा है? आज आप 21st सेंचुरी में हो के आप बताइए, किसी से आप पूछ ले, इतनी आज तरक्की हो चुकी है, सबमरीन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आप किसी से पूछें ऐसे एक बंदे को निकालना हो जिसको मछली ने निगल लिया है, मछली के पेट में है, समंदर कितना बड़ा, उसमें कितनी मछलियां हैं, कौन सी मछली के पेट में, उसको सही सलामत बाहर निकालना है। आज के दौर में भी इतनी तरक्की, जहां पे आप कहते हैं कि जी हमें तो आज हर कुछ पता है, हमारे पास सैटेलाइटें हैं, जमीन के कोने कोने को हम जानते, चैलेंज है कि कोई निकाल के ला सकता है? चैलेंज है, कोई नहीं ला सकता। आप इंसानों से पूछ के देखें, साइंसदानों से पूछ के देखें, कौन सी मछली का पेट चाक करेंगे उसमें से निकलेंगे कि कोई इंसान निकल सकता है, कहां से ढूंढेंगे उस मछली को? लेकिन जब रब ने मदद करनी हो ना, तो नामुमकिन हालात, अंधेरों से भी वो इंसान को निकाल लेता है। कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए कि अंधेरों में फंस गए हो ना, आपको लग रहा है देर इज नो वे आउट, नो वे आउट, ये जो यूनुस अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है ना, ये हमें सबसे ज्यादा इस चीज को बताती है कि जिस वक्त ऐसे हालात हो जाए कि इंसान को लगे कुछ नहीं हो सकता, एंड बस खत्म, पॉसिबल ही नहीं है, सब कह दें पॉसिबल नहीं है, तब भी पॉसिबल है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज नामुमकिनात में से है ही नहीं। अल्लाह वाला कुल्ली शैइन कदीर। जाओ सारी फौजें ले जाओ, अपनी तमाम असलहे ले जाओ, सब तरह की अपनी साइंसी इजादात ले जाओ, निकाल के ला के दिखाओ किसी को मछली के पेट से। आपके तो यहाँ पे आज बड़े बड़े जहाज जब गिर जाते हैं, अल्लाह माफ करे, वो नहीं मिलते, गिरा हुआ मलेशियन एयरलाइन का जहाज, उतने ढूंढ रहे, इतना बड़ा जहाज, इनको यही नहीं पता चल रहा था गया कहाँ वो। अभी इंसान बहुत अपनी तरफ से बनता है कि मैं तो बड़ा इल्म वाला, जो जहाज ना ढूंढ के ला सके, वो मछली के पेट में बैठा इंसान ढूंढ के ला सकते। और अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि ये फरमा दिया, उस हाँ सारी कायनात अल्लाह की गुलाम है, मछली को हुक्म दे दिया, इनको गजंद भी ना पहुंचे, देखे बिल्कुल ठीक ठाक अंदर बैठे। और सुभान अल्लाह, जब अंदर जाती है अल्लाह अकबर, तो समुंदर की तह की जो कंकरियां उनकी तस्बीह सुनते हैं और खुद भी तस्बीह शुरू करते हैं। पहले तो जाके समझा कि मैं तो मर ही गया, फिर पैर को हिलाया तो यकीन हुआ मैं जिंदा, वहीं सजदे में गिर पड़े, कहने लगे या अल्लाह, है बारी ताला, मैंने तेरे लिए इस जगह को मस्जिद बनाया, इससे पहले किसी ने यहाँ पे सजदा नहीं किया होगा। सुभान अल्लाह, आप भी जब जहाजों में जाते हैं ना, कभी जरूर कोशिश किया करें फिजाओं में सजदे करें, सजदे और लोगों ने भी किए होंगे, हमारा कोई खास नहीं है, लेकिन बस इसलिए कि एक शौक होना चाहिए कि मैं यहाँ पे सजदा करूँ, अल्लाह जमीन पे तो तेरे बंदे हैं सजदा करने वाले, अल्लाह मैं हवाओं में तुझे सजदा करती हूँ, फिजाओं में तुझे सजदा करती हूँ, तो कितनी प्यारी बात है ना, अल्लाह इस जगह को तो किसी ने सजदा गार ही बनाया, मछली का पेट, अल्लाह मैं यहाँ पे तुझे सजदा कर, सुभान अल्लाह। तो वहां पे ये भी आता है कि जब समुंदर की तह में वो मछली चली गई ना, तो वहां तस्बीह सुन के हैरान रह गए, और वही इनके ऊपर आई कि ये समुंदर के जानवरों की तस्बीह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो आपने तस्बीह शुरू कर दी इसको, जब इन्होंने तस्बीह की तो जाहिर है इंसान जो तस्बीह करता है ना, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, क्या चीज है, तो ये उसकी तस्बीह अर्श तक चली जाती है। सुभान अल्लाह, अर्श तक चली जाती है और अर्श की गिर्द घूमती है। और हदीस में आता है कि इसकी ऐसी भिनभिनाहट होती है जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं ना, ऐसे भिनभिनाहट तस्बीह की होती है। एक अदना इंसान की तस्बीह कहां वहां तक पहुंच जाए, वहां चक्कर लगाने लगे, वहां पे अल्लाह ताला को इस बंदे की याद दिलाती है जो जमीन पे उसकी तस्बीह कर रहा। तो जब इन्होंने तस्बीह की, इनकी तस्बीह सुन के फरिश्तों ने कहा, ए बारी ताला, ये आवाज तो बड़ी दूर की और बहुत कमजोर है, किसकी आवाज है, हम तो पहचान नहीं सके। जवाब मिला, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज, इसने मेरी नाफरमानी की, मैंने इसे मछली के पेट के कैद खाने में डाल दिया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, इनके नेक अमाल तो दिन रात हर वक्त ऊपर चढ़ते हैं। इसका मतलब इंसानों के नेक अमाल जो होते हैं ना, जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होने वाले होते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं। तो फरिश्तों ने सिफारिश की है, अल्लाह इस बंदे के नेक अमाल तो दिन रात ऊपर चढ़ते हैं, इतने ही ये नेक काम करता है। अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली, मछली को हुक्म दिया, हुक्म देने की देर थी, वही जो इम्पॉसिबल चीज है, मछली ने अगर खुद उगल दिया किनारे पे, कौन ला सकता था, लेकिन अल्लाह ताला जब कुन कह देना तो फिर ऐसी चीजें होती। अल्लाह अकबर। इससे आप ने फरमाया, किसी को लायक नहीं वो अपने आप को यूनुस बिन मत्ता से अफजल कहे। अल्लाह के इस बंदे ने अंधेरों में अपने रब की तस्बीह बयान की, अब मायूस नहीं हुए, अब मैंने कहा निकलना, अब तो यही मर जाता हूँ फिर मेरे खा। और हमारे जैसे कोई लोग हो तो वो जरा से भी हालात के ऊपर कहते हैं, बस अब खत्म हो गया, अब नहीं कुछ, अब कोई नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह अकबर। और ये भी आता है रिवायात में कि फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह ये वही यूनस है जिसके पाक अमल जो है कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते थे, जिनकी दुआएं तेरे पास मकबूल थी। अल्लाह जैसे वो राहत के दिनों में, आराम के दिनों में नेकियां करता था, तो इस मुसीबत के बाद इस पे रहम करते हैं अल्लाह। देखिए ना, फरिश्तों की भी, इसे पता चलता है कि उनकी भी सिफारिश क्या थी कि अल्लाह इसने अच्छे दिनों में तुझे याद रखा, उनमें नेकियां की, तो अल्लाह मुसीबत के दिनों में तुम इस पे रहम। इसी बात अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दे दिया। तो देखिए ना, हम जब अच्छे दिन होते ना तभी हम अल्लाह याद नहीं आता, जब कोई मुश्किल आती है तो फिर हम पुकारते हैं। हालांकि अगर अच्छे दिनों में आपने पुकारा होगा अल्लाह ताला को, वो आपके बुरे दिनों के अंदर आपको याद रखेगा। हम जरूरत ही महसूस नहीं करते ना, हम सोचते हैं अभी क्या जरूरत है, मतलब के वक्त सिर्फ हम आते हैं। तो ला इलाहा इल्ला अंता के अंदर क्या है, तौहीद बयान की गई है। सुभानक, तू पाक है अल्लाह, हर ऐब से, हर मोहताजी से, हर कमी से, हर कोताही से, हर उस चीज से जो तेरी शान के लायक नहीं है, तो उससे पाक है। अल्लाह हु अकबर। पर इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, और बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ, अल्लाह मैंने गलत किया। और जब हमारे से कोई गलती हो जाए तो हम ढूंढते हैं कि आप किसके ऊपर इल्जाम लगाए, फलाने उसकी वजह से हुआ। अब वो भी कहते हैं लोगों का ये बुरा हो जिन्हों जिनकी वजह से मैं निकला वहां से, और उन्होंने ही मेरी बात नहीं मानी, कसूर तो असल में उनका है, मेरा क्या कसूर है, मैं तो निकला ही था। कितनी बातें हो सकती थी ना, लेकिन इन्हीं कुन तो में नजर नहीं, जैसे एक्सेप्ट कर लेना अपनी गलती, ये बहुत बड़ी बात है और बड़े लोगों का काम होता है, और इसके लिए बड़े दिल चाहिए। तो हमारे थोड़े छोटे छोटे दिलों वाले, इनसे कहाँ अपनी गलतियां एक्सेप्ट की जाती। हम तो सोचते हैं ये किसके ऊपर फिंगर पॉइंट करें, इसने किया था, बच्चों ने किया, हस्बैंड का कसूर, फलां का कसूर, ससुराल का कसूर, मेरे उसका कसूर, मेरे दोस्तों का कसूर, किस किस को नहीं हम कसूरवार ठहराते अपनी गलत कामों पे, हर एक कसूरवार है, सिर्फ मैं ही बरी उस जिमा, पाक साहब तो मैं ही, हम ये कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं अल्लाह के पैगंबर हो के वो भी कहते मेरे को अभी इतनी बड़ी गलती कर दी, आज तक मैंने इतनी नेकियां की, ये कौन सा ऐसा गुनाह मैंने कर दी। हम तो फौरन बोलते ना, मैंने क्या कौन सा ऐसी बड़ी गलती कर दी, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। इन्नी कुंतु मिना ज़ालिमीन, हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर। अल्लाह मैं कसूरवार हूं, मैंने गलत किया है, हम बड़े बड़े गुनाह करके भी ठंडे पेट बैठ के सोचते हमने कुछ नहीं किया, वो इतनी सी खता पे भी कहते हैं अल्लाह मैं जालिम हूं। अल्लाह हू अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ने भी एक ही गलती की थी ना, और वो कहते हैं रब्बना जलम ना अनफुसन, और हम जिंदगी भर गलतियां करके भी कहते हम कोई कसूरवार नहीं, हमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं, हमने क्या कसूर किया। और ये इतना बड़ा कलमा है, इतनी बड़ी बात है, और कि जो भी मुसलमान किसी मामले में जब कभी इन कलिमात के साथ दुआ करेगा अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। हदीस में भी आता है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला का वो नाम जिससे वो पुकारा जाए तो कबूल फरमा ले, और जो मांगा जाए वो अता करे, वो यूनुस बिन मत्ता की दुआ में है। ये है वो, यानी कोई इसमें आजम है इसमें या जो जो भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जब उसको जो वो इस कलमे के साथ अल्लाह से कुछ मांगे और अल्लाह ताला रद्द करते, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दे इस जो इस कलिमात के साथ मांगे। लिहाजा ये नहीं कि आपने 1,25,000 दफा ये पढ़ना है, ये नहीं आपने गुठलियां ला के रखनी और गिन गिन के आप पढ़ रहे हैं। यूनुस अलैहि सलाम को कितनी वो गुठलियां मिली थी मछली के पेट में, किसने ला के दी थी कि वो 1,25,000 दफा गिन रहे थे और उन्होंने गिन गिन के पढ़ा था। वो खुद भी तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना, वो सोचा करे ना जब कोई अमल कर रहे होते हैं कि ये क्या मैं कर रही हूं, कौन बैठा हुआ था वहां पे, कौन उनसे गिनवा रहा था वहां पे। तो आप 100 दफा पढ़ें, चाहे 700 दफा पढ़ें, 1,000 दफा पढ़ें या 10,000 दफा पढ़ें, मगर पढ़ें तो दिल से, आपको पता होना चाहिए मैं क्या कह रही हूँ। लोगों को बुला के ना बिठा लिया करेंगे, तुम कहोगे मैं जालिम हूं, वो जालिम वो कहते चाहे काम मेरा हो जाए, मैं तो जालिम हूं नहीं, मैं किचन में खाने पकाती रहूं और उनको बस दे दूं क्योंकि ये आयत करीमा का खत्म हम करा रहे हैं, हमारे मसले हल हो जाए। कभी खुद भी कह दिया करें कि मैं जालिम हूं, या बस हमने लोगों को बुलाया अब ये काम भी वो ही कर दे, हमारी जगह तौबा भी वो ही कर ले, हमने तो तौबा भी नहीं करनी। तो ये ना समझी के काम नहीं हमें करने चाहिए, अकल को इस्तेमाल करें। क्या ये कलिमात हैं, कितने जबरदस्त हैं, इनमें क्या बात कही जा रही। और अल्लाह ताला को तौहीद के कलिमात बहुत पसंद है, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो तारीफ इंसान कर सकता है ना वो तौहीद बयान करके। तो इसलिए ला इलाहा इल्ला अंता, अंता है, ला इलाहा इल्ला ला भी नहीं है। अच्छा अंता और ला इलाहा इल्ला ला में क्या फर्क है, कि जब आप अंता कह रहे हैं ना सेकंड पर्सन में बात कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे कोई सामने है, अब उसको कहते हैं ना तुम, तू तुम उसको कहते हैं जो सामने है, वो अंदर अंधेरों के पड़े में, लेकिन अल्लाह तू तो फिर भी करीब ही है ना, तू तो फिर भी मेरे सामने ही है, दूर नहीं है तू। अंता तो उसी को कहेंगे जो मौजूद है ना, जो जिसको आप समझें कि वो है ही नहीं, उसके लिए तो आप थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहे अंधेरों में समंदर की गहराइयों में भी चला जाऊं, अल्लाह तू तो मेरे करीब ही है। तो ये बहुत ही प्यारे कलिमात है, बहुत ही प्यारी बात है, और इंसान सोचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाइजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब ही हूँ, वाकई वो करीब है, इसलिए अंता फरमाया। अल्लाह अकबर। तो अब हम इसको इस बात को याद रखें हमेशा कि जब भी ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आ जाए जिसके अंदर इंसान को कोई वे आउट नजर ना आए, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो ये आयत करीमा पढ़े। फस्तजबना लहू, तो दुआ कबूल कर ली हमने उसकी, और इसकी वजह से, ये देखिए ना, ये भी हदीस में आता है कि अगर वो ये कलिमात ना कहते तो कयामत तक मछली के पेट के अंदर ही रहते। कितनी पावरफुल होंगे ये कलिमात, बहुत पावरफुल है। मेरी एक बात नहीं समझ आती कि ये कुरान हमें इतने पावरफुल कलिमात बता रहा है कि इतनी नामुमकिनात चीजें जिनसे हल हो गई, ऐसे मसले हल हुए और ऐसी मुश्किलें हल हुई कि किसी चीज से भी इंसान सोच ही नहीं सकता कि किसी कोई भी मेरी अपनी कोई ताकत चल सकती है। ऐसे ऐसे मसले थे, और चाहे वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी हो गई, चाहे मछली के पेट में कैद हो जाना हो, फिर भी हमारी तवज्जो इनकी तरफ क्यों नहीं होती और आ, 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 इन चीजों की तरफ क्यों होती है जो उसने बता दिया और उसने बता दिया और उसने कह दिया, इनकी तरफ क्यों होती है? इतना हम उनको क्यों वैल्यू देते हैं उनकी बातों को? ये जो सुनी सुनाई हर बात है ना, बस वो हमने पकड़ लेनी है। तो ये इसकी तरफ आए, कुरान की तरफ। दूसरा ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह ताला को हर हाल में याद रखें। देखिए मैं अपने लिए, आप अपने लिए, हम इतने सेंसिटिव हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार होता है ना, जब को उसको मुश्किल होती है तो फौरन से हमें फोन करने लगता है और उसके अलावा किसी टाइम पूछता ही नहीं, कभी हाल ही नहीं पूछा उन्होंने। लेकिन जिस वक्त कोई काम आ जाए, बस उनको हमारे नंबर भी मिल जाते हैं और फिर फोन भी करते हैं, हमें इतना गुस्सा उस वक्त आता है। हालांकि हमारी क्या शान है और क्या हमारी औकात है, क्या चीज है, हमने हमने करना भी है तो अल्लाह के इज्जत से ही करना, लेकिन बड़ा वो हमें गुस्सा आता है कि देखो जरा इतने मतलब ही है, उस वक्त इनको फोन करना याद आ जाता है, उस वक्त हम याद आ जाते हैं, आगे पीछे पूछते नहीं, कितनी बातें हम करते हैं, लेकिन क्या यही रवैया हम अल्लाह ताला के साथ नहीं रखते? या हमें उस वक्त अल्लाह याद आता है? और जब हमें कोई प्रॉब्लम, ये नहीं कि आप प्रॉब्लम है अल्लाह को ना पुकारे, जरूर पुकारे, उसी को तो पुकारना और किसके पास जाना है, लेकिन बुरी बात यह है कि सिर्फ उस वक्त क्यों पुकारते हैं, बाकी टाइम पे कहाँ है, बाकी टाइम पे नहीं जरूरत क्या? तो वरना जईना हो मिनल गम, तो हमने निजात दी उसको गम से। गम भी इंसान को चाट जाता है, खा लेता है उसको, तो अल्लाह ताला ने गम की कैफियत ही उससे ही निकाल दिया। वकदालिक नुंजिल मुमिनीन। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये कलिमात सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ही थे कि उनको मुश्किल से निकालने वाले, या हर एक के लिए हो सकते? अल्लाह ताला फरमाता है सब के लिए। इसी तरह हम निजात देते ईमान वालों, जो ईमान वाला इस तरह से अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला उसको निजात दे। इमाम हसन बसरी से पूछा कि अबू सईद, अल्लाह का वो इस्म आजम कि जब उसके साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, जब उसके साथ सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो क्या है? तो फरमाया, क्या तुमने कुरान करीम में अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयतें तिलावत फरमाई, फरमाया यही अल्लाह का वो इस्म आजम है, जब इसके साथ दुआ की जाए वो कबूल करता है, जब इसके साथ मांगा जाए वो अता करता है। क्या तो इसको इसमें भी लिख लें कि जब आपने दुआ करनी हो तो फिर आप ये कलिमात कह के फिर दुआ करें। इस तरह सारे ईमान वालों के लिए ओपन डोर्स हैं, जो भी इन कलिमात के साथ पुकारेगा। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन वा अंता ख़ैरुल वारिसीन। और ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उन्होंने पुकारा, और इनका जिक्र हम सूरह मरियम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सूरह मरियम स्टार्ट ही हुई थी इनके जिक्र के साथ, जब किस तरह इन्होंने पुकारा, बुढ़ापे को पहुंच चुके थे, और फिर हजरत मरियम के पास जब देखे कि बेमौसम फल हैं, तो फिर ये अपने लिए भी मांग लिया कि अल्लाह तो उनको बेमौसम फल दे सकता है तो अल्लाह मुझे भी औलाद दे सकता है। अल्लाह तज़रनी फ़र्दन, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना, अंत खैरुल वारिसीना, तू बेहतरीन वारिस है। अल्लाह मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर चला गया दुनिया से तो तेरे दीन का क्या बनेगा, कहते ना भी ये वारिस वो इसलिए नहीं मांग रहे थे कि उनके पास अंबिया के तो कोई जायदादों का वारिस होता ही नहीं, इल्म का वारिस होता है, उनके जायदादों का नहीं होता, उनके माल और दौलत का वारिस नहीं होता। लिहाजा वो ये नहीं कह रहे थे कि मैंने मेरी जायदाद कौन संभालेगा, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, मुझे वारिस चाहिए। वो ये कह रहे थे अल्लाह मैं इस दीन के काम को आगे लेके जाने वाला, क्योंकि अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के अंदर कोई भी उनको ऐसा नहीं नजर आ रहा था जो इस काम को लेके चलेगा, तो अल्लाह तुझे जरूरत नहीं है, तू तो खुद बेहतरीन वारिस है, तेरा काम तो चलता रहना है अल्लाह, तुझे हमारी जरूरत नहीं, ना मेरे बच्चे की जरूरत है कि वो ही तेरे दीन का काम करेगा तो होगा, तुझे तो किसी की भी जरूरत नहीं, ए अल्लाह मगर मुझे ही जरूरत है। ये मेरा ये मिशन आगे पहुंचे, तो इसके लिए औलाद मांग रहे हैं। मैं अपने दीन के काम के लिए कैसा बच्चा तैयार कर दूं कि आगे इस काम को लेके चलता रहे। अल्लाह ताला ने फिर फसद अबना लहू हबना लहू याहिया, तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और अता किया उनको याहिया। और सुभान अल्लाह, एक बहुत प्यारी बात है कि ये नहीं कि वो बीवी तो बांझ भी थी और बूढ़ी बिल्कुल हो चुकी थी, सूरह आले इमरान में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आप एक और शादी करें तो फिर वो सही औरत होगी, उससे फिर औलाद होगी, इससे कैसे हो सकती है, सारी जिंदगी से नहीं हुई जिनके पास। फरमाया वा असलहना लहू ज़ौजहू, उनकी बीवी को उनके लिए ठीक ठाक कर दी। सुभान अल्लाह, उसी बीवी से दी, इसलिए कि ये बीवी कितनी साबिरा और शाकिरा होगी, इतना अरसा औलाद नहीं, जबकि एक औरत की तमन्ना होती है कि उसको औलाद हो। अब सारी जिंदगी वो शोहर की मददगार रही, सपोर्टर रही, जाहिर है इनकी बीवी कोई लूत अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम की बीवियों की तरह नहीं थी, लेकिन हम देखते नहीं कहीं कि इन्होंने कोई शिकायत की हो या कोई ऐसी बात की हो बेसब्री की, जबकि हम दीन की जरा सी भी कोई खिदमत कर लेते ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला बस हमारे लिए सारे काम इधर मैं बोलूं और उधर पास काम हो जाए, कुन फयकून होने लगे। क्योंकि मैं जो इतना ही काम करती हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, मैं देखो कितना मैं दीन की कितनी खिदमत कर रही हूँ, तो हम तो इतने दीनदार हैं, हमारा तो सारे काम अच्छे होने चाहिए। तो और अगर ऐसा ना हो तो फिर फौरन अल्लाह ताला को क्वेश्चन करने लगते और फौरन डाउट करने लगते, फौरन कहते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया, ये फिर किस जुर्म की सजा हमें मिल गई, हम तो कितने अच्छे लोग हैं, इतना काम मैंने किया। तो ये शैतान का ट्रैप होता है। उनकी बीवी ने ये नहीं कहा कि मैं तो सारा वक्त अपने शौहर के मिशन में साथ लगी रही। जाहिर है जब भी कोई भी, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी दीन का काम करता है, उसके स्पाउस की, उसके जॉज की सपोर्ट जरूरी होती है, तो ये साथ लगी रही ना अपने हस्बैंड के। अल्लाह ताला ने देखे उनको फिर कैसे नवाजा, इन्हीं से अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ताला ने उनको ठीक कर दिया, सारी जिंदगी महरूम रही, लेकिन अब जब अल्लाह चाहे तो तब बता कर दे, उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिउना फिल खैरात, ये जिनकी भी बातें हो रही ना सबकी, जितने लोगों की बातें हुई हैं, जकरिया अलैहि सलाम की अल्लाह ने दुआ सुन ली, फिर आप देख ले अय्यूब अलैहि सलाम की सुन ली, ये सारे सबर वाले लोग थे ना, उन्होंने बड़े सबर किए, कुल्लू मिन सबरीन थे ना, किसने इनमें से बेसब्री की हो, किसने इनमें से कहा कि ओ इट्स नॉट इवन पॉसिबल, और ये तो बस अब फलानों ने भी कह दिया और फलां भी कह रहे हैं, और कौन इनमें से था जो अल्लाह को छोड़ के कहीं और चला गया हो, कौन इनमें से था कि जिसने उम्मीद खत्म कर दी हो, इनकी क्वालिटी क्या थी, क्यों इनकी दुआएं कबूल हुई। इन्नहुम कानू युसारिउना फिल खैरात, ये वो लोग थे जो नेकियों में दौड़ने वाले थे, नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे, साबिकून अल अव्वलून थे। देखिए नेकी के जो मौका आता है ना, उसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रवैये होते हैं, कुछ लोग नेकी के मौके को ऐसे जाके आगे लपक के लेते हैं कि जैसे कि पता नहीं कोई उनको सोना चांदी के लिए, जैसे लोग भागते हो सोने का ढेर कहीं लगा ले और लोगों को कहेंगे जाएं तो कैसे दौड़ के जाएंगे लेने के लिए, कई लोग नेकियों के लिए ऐसे दौड़ते हैं। बाकी तो ऐसे होते हैं ना कि नेकी का मौका आ जाए तो वो कन्नी कतराते हैं कि मुझे कोई देख ही ना ले, पीछे पीछे होके बैठते हैं कि अरे मेरा नाम ही ना ले लें कहीं कि आप ये काम कर दें, मेरा किसी को पता ही ना चले, बहाना कर देंगे वो, नहीं मैं तो बड़ी बिजी हूं असल में इसलिए, कहीं कहीं छुपने की कोशिश करते हैं। और कई होते हैं वो भागते हैं नेकी की तरफ, उसे दूर नहीं भागते उसकी तरफ भागते हैं। सुभान अल्लाह, उनको तो ऐसे लगता है पता नहीं हमें क्या गोल्डन चांस मिल गया। दूसरे कहते हैं कि हाय किसी तरह जान बची जाए तो अच्छा है, नाम भी रह जाए और जान भी बच जाए, या फिर देखते रहते हैं और लोग करेंगे तो मैं भी कर लूंगी, अच्छा उसने दे दिया डोनेशन अच्छा चलो फिर मैं भी निकाल लेती हूँ, अच्छा वो भी जा रही है चलो फिर मैं भी चलती हूँ, पहले तो नहीं हमें याद आया, हम वेट करते हैं लोगों का, उसने भी शुरू कर दिया काम तो अब मैं भी कर लेती हूँ, तो वो दूसरों का वेट करते हैं, ये लोग वेट नहीं करते, ये जल्दी करते हैं नेकियों में, डिले नहीं करते, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे अभी तो बड़ा टाइम पड़ा फिर कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। हम ये कहते हैं ना हमारे से फर्क उनका क्या था, जल्दी करते हैं। हम कहते हैं जल्दी की क्या जरूरत है, बाकी सब कामों में जल्दी करते हैं। सेल लगी हो तो हम जल्दी से जाके लेना चाहते हैं क्योंकि चीजें खत्म हो जाएंगी ना, लोग ना ले जाएं। कई फ्री चीजें मिल रही हो तो जल्दी भागते हैं, लेकिन नेकियों में जल्दी नहीं करते। नेकियों में कहते हैं अभी बड़ा टाइम है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, ये काम हो जाए फिर कर लेंगे, वो हो जाए फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, कल कल करते करते। ये जो कितने आप कब्रिस्तान में लोग देखते ना, ये भी कल कल करते करते डिले करते रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन इन्ना हम क्या नु यो सवार यो नफिल खैरात, अल्लाह ताला ने इनकी इतनी बड़ी ये क्वालिटी बताई है, ये लोग नेकियों में तेजी दिखाते हैं। वह यदाउनना रगबा व रहबा, और वो हमें पुकारते थे रगबत के साथ और खौफ के साथ भी। तो दूसरी वजह क्या है इनकी, इन दुआओं की कबूलियत की, इनकी इन दुआओं के सुन लिए जाने की, कि अल्लाह ताला ने इनको इन चीजों से निकाला। हम जानना चाहते ना कि क्या बात थी इनके अंदर स्पेशल, क्या बात थी। तो ये बातें थी स्पेशल, वो हमें हमें ही पुकारते थे, अल्लाह ताला को ही पुकारने वाले थे, और हर हाल में पुकारते थे, उम्मीद के साथ भी और खौफ के साथ, चाहे हालात फेवर में हो चाहे हालात खराब हो, दोनों सूरतों में अल्लाह को पुकारने वाले थे, उससे दुआएं करने वाले थे। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुश्किल हालात में तो फिर भी लोग पुकार लेते हैं, अच्छे हालात में कम ही अल्लाह याद आता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये हर हाल में पुकारते हैं, और ये ऐसे हैं जिन जो उम्मीद भी रखते हैं और डर भी रखते हैं। जैसे वो हजरत उमर ने फरमाया था ना, उम्मीद और डर के दरमियान जो चीज होती है वो क्या होती है, बाज लोग सिर्फ उम्मीद ही रखते हैं, उम्मीदों पे जीते हैं, नहीं अल्लाह गफूर रहीम ना माफ माफ कर दे, ये भी गलत है कि सिर्फ उम्मीद होने। और बाज लोग इतने खौफ में रहते हैं कि वो हमेशा यही कहते रहते हैं, नहीं अब मेरी माफी नहीं होनी, बस मैं तो खत्म, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं मेरी माफी, क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर सकते, इतना ही खौफ हो गया कि उम्मीद ही छोड़ दी, ये भी गलत है। सही क्या चीज है, सही ये चीज है जैसे हजरत उमर ने फरमाया कि अगर आसमान से निदा आए कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को माफ कर दिया सिवाय एक के, तो मुझे ये डर होगा कि शायद वो मैं हूं, मुझे ये डर होगा वो एक जो है ना शायद मैं हूं। और दूसरी तरफ फरमाया कि अगर आसमान से निदा आए कि अल्लाह ताला ने सबको जहन्नुम में डाल दी सिवाय एक के, जहन्नुम का फैसला कर दिया सिवाय एक के, तो मुझे उम्मीद होगी कि शायद वो मैं हूं। उनको यानी उम्मीद और खौफ के दरमियान ही ईमान होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उम्मीद के ऊपर चलते रहे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खौफ पे चलते रहे, दोनों ही खतरनाक हो जाएंगे अगर आपने दूसरे को छोड़ दिया। लिहाजा दोनों को लेकर रगबत भी होनी चाहिए, रहब भी। वकानु लना खाशईन, और वो थे हमारे लिए खुशू करने वाले, हमारे लिए झुकने वाले, आजी करने वाले, दबने वाले, हमारे आगे नीचे होके रहने वाले, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो अब समझ आ गई कि दुआएं, जब हम कहते हैं मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती, तो इनमें से कौन से काम है जो हम करते हैं। और फिर आखिरी बात बीबी मरियम की, पहले सारे अंबिया का जिक्र आया, सारे के सारे कैसे थे, नेकी के कामों में बढ़ने वाले थे, अल्लाह ताला को पुकारने वाले थे, रगबत में भी के साथ भी और खौफ के साथ भी, और झुकने वाले थे अल्लाह ताला के आगे, ये इस किस्म के लोग थे सब। और अब आखिर के अंदर बीबी मरियम की बात आई है कि वल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, यानी अपने आप को पाक रखने के लिए, अपने कैरेक्टर को साफ रखने के लिए, मेरे दामन के ऊपर कोई भी ऐसा धब्बा ना लग जाए, इसके लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का ये मतलब है। कैरेक्टर के ऊपर कोई नाम ना ऐसा आ जाए, वो ऐसी औरत थी। क्योंकि एक औरत के लिए और खास तौर पे कमारी के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि वो इन चीजों का एहतमाम करे, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि मेरा दामन दावदार, मेरे ऊपर हर्फ आए, मेरी इज्जत के ऊपर बात आ जाए। और इसी के ऊपर उनकी एक आजमाइश भी हो गई कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी बिन बाप के, फनफखना फीहा मिन रूहिना, तो हम फूंक दिया हमने उसमें अपनी रूह से, जबकि हमने सूरह मरियम में पढ़ा जिब्राईल अलैहि सलाम ने आके फूंका था, लेकिन किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए फरमाया कि हमने अपनी रूह में से फूंका, और ईसा अलैहि सलाम को रूह अल्लाह भी कहा जाता है इस वजह से। वजालनाहा वबनाहा, और हमने उसको बनाया किसको? हा की जमीर किधर जा रही है? हजरत मरियम की, और उनके बेटे को आयतल आलमीन, निशानी जहान वालों के लिए। कैसे इनको कैसे निशानी बनाया? कि बगैर किसी मर्द के इनको अमल ठहरा, औलाद हुई। और बेटे को कैसे निशानी ठहराया? कि अल्लाह ताला ने उनको बिन बाप के पैदा किया और उनको जिंदा आसमानों पे उठा लिया, और कुर्बे कयामत में वो दुनिया में आएंगे। तो बहुत बड़ी निशानी है, और ये तो कभी ही ना आज तक हुआ था, ना किसी ने सुना था कि किस तरह से एक औरत बगैर किसी मर्द के छुए हुए वो उसकी औलाद हो रही है। तो वो पाक दामन थी, और ये पाक दामनी जो है ना, औरत की बहुत बड़ी एक सिफत है कि उसकी इज्जत पे हर्फ ना आए, कोई ऐसा काम ना उससे हो जाए, वो इस चीज का ध्यान रखे। और हजरत मरियम चूंकि हमारे लिए रोल मॉडल है, इनको बेस्ट कहा गया, औरतों में जो बेस्ट औरतें जिनके नाम लिए गए ना, उनमें एक बीबी मरियम भी है। और अल्लाह ताला ने इनकी ये जो क्वालिटी है ना, देखें इसको बार बार मेंशन किया है कुरान में, कहीं ये नहीं इनकी क्वालिटी बताई गई कि वो बहुत खूबसूरत थी, कहीं ये नहीं क्वालिटी बताई गई वो बहुत जबरदस्त थी लुक्स में, कहीं ये नहीं क्वालिटी बताई गई कि उनका रंग बहुत गोरा था, कहीं ये नहीं क्वालिटी बताई गई कि वो अप टू डेट बहुत रहती थी, कहीं ये नहीं क्वालिटी बताई गई कि वो बड़ी सुघड़ खातून थी, ऐसी ऐसी वाली बातें नहीं बताई गई। इसलिए कि ये चीजें अल्लाह ताला के हाँ ऐसे मैटर नहीं करती। एक औरत के लिए जो हमने सोचा था ना कि बस खूबसूरत हो, हुस्न की टुकड़ी हो, और बस रंग गोरा हो, और तीखे नए नक्श हो, और फलां हो, और ये इस तरह के हमारे जहन के अंदर एक जबरदस्त औरत का जब तसव्वुर आता है तो हम ये सोचते हैं। हालांकि ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने पीछे डाला। आज औरतों को परवाह नहीं है कि उनकी उनके ऊपर कोई हर्फ आए, कुल्लम कुल्ला वो मर्दों से भी बात करने में कोई आर नहीं समझती, उनके साथ चैटिंग करने में, उनके साथ फोन पे बातें करने में, उनके साथ बैठने में, मजलिसों में, गपशप करने में, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो गैर शादीशुदा है, इसे को उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई धब्बा लगे तो लगता फिर वी डोंट केयर। बीबी मरियम को देखें, आज भी आप अंदाजा लगाएं से, आप इसी पे नहीं, आप बहस कर रहे हैं कि पर्दे की और ये वाली आयतें नहीं है, लेकिन सारी चीजें चूंकि रिलेटेड है ना, इसलिए आज भी इन्होंने अपने दीन में सभी कुछ चेंज कर दिया था, कुछ रह नहीं गया, इनका दीन बिल्कुल ही हुलिया ही बिगाड़ दिया था। लेकिन जब ये बीबी मरियम का स्टैचू बनाते या तस्वीर बनाते तो उनको बड़ी चादर के साथ दिखाते। हालांकि इनके हाँ तो वो जो इनकी मॉडल्स हैं या वो सारी बिल्कुल आधी नीम बरहना आधी नंगी होती है, लेकिन कभी इनको भी जुर्रत नहीं हुई कि बीबी मरियम के सर से भी उतरा हो कोई दुपट्टा, उनको कभी दिखाया हो लंबे लंबे बाल खोल के बैठी हुई। इससे नहीं आपको पता चलता कि जो अल्लाह के यहाँ नेक औरतें होती वो कैसी होती? इसे नहीं आपको समझ आती? छोड़े आप सारी पर्दे की इसकी सबकी बहस छोड़ दें, फर्ज है कि नहीं है, सुन्नत है कि क्या है, फलाना है कि कुरान में है कि नहीं है, हदीस में है कि इसमें है, और मुझे क्या परवाह है, लोग अपनी नजरें नीची रखे ना, मैं तो जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी, और नजरों में हया होनी चाहिए ना। सारी बातों का जवाब मिल जाता है, आप सिर्फ मुझे बताएं जो बेस्ट औरतें इस दुनिया की कहीं गई बीबी मरियम देख ले, बीबी आसिया देख ले, हजरत खतीजा देख ले। आप मुझे बताएं, चले बाकियों के तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, लेकिन कोई इनकी तो हम देखते हैं ना इन लोगों से कि ये किस तरह उनको देखते हैं जो उनके मानने वाले हैं। आप बताएं वो क्यों नहीं उनको ऐसा बताते हैं, लेकिन इनके लिए तो कोई ये चीजें बुरी है ही नहीं है। इनके लिए तो आधे कपड़े पहन लेना भी कोई बुरा नहीं है, इनके लिए तो बाल नंगे रखना भी कोई बुरा नहीं। क्यों उनको कवर करके रखते हैं? क्यों इनकी नंस हैं कि एक नीचे उन्होंने स्कार्फ पहना होता, ऊपर इतनी बड़ी चादर ली होती, नीचे व्हाइट ऊपर काली चादर। वो क्यों नहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन के और ऐसे पहन के फिरती? वो क्यों नहीं स्कर्ट्स पहन लेती? कुछ इससे सोच नहीं आती, समझ नहीं आता अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी चीजें वैल्यू करती हैं। अल्लाह ताला ने नेक औरतों को कैसे बताया है, कैसे डिपिक्ट किया है, उनकी पिक्चर कैसी है, ये नहीं समझ आता। खुद ही आंखें बंद कर लेना तो अलग बात है। नहीं, वो मर्दों को नजरें नीची करनी चाहिए, हम जिस मर्जी हुलिये में बाहर निकले, ये हमारा तो नहीं जिम्मेदारी कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। ये कहां से आया? देखिए, जिस औरत ने अपनी हिफाजत करनी हो वो क्या ऐसे करेगी कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं? आपकी जिम्मेदारी है अपनी इज्जत की हिफाजत करना, आपकी जिम्मेदारी कि ऐसे ना कपड़े पहन के बाहर निकले, ऐसे हुलिये में ना निकले कि लोगों की नजरें आपके ऊपर पड़े, आप ऐसे अपने आप को इस तरह जीनत दे के ना घूमती फिरे कि किसी के दिल के अंदर कोई बात आए, कहते हमारे हमें क्या परवाह है। तो फिर क्यों बीबी मरियम को क्या परवाह थी? तो वैसे भी वहां पे बैठती नहीं हैकल में, उनको तो वह इबादत ही करती थी। लेकिन वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। मेरी इज्जत पे कोई हर्फ ना आए, इसमें आपका पर्दा भी आ जाता है, इसमें आपकी नजरों की हिफाजत भी आ जाती है, अपनी नजरों की भी हिफाजत है इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर अपना किरदार भी आ जाता है, इसमें किस तरह की हम डीलिंग करते हैं माशरे के मर्दों के साथ वो भी आ जाती है, इसमें हम किधर जाते हैं और किधर उठते बैठते हैं और किन मजलिसों में हम होते हैं वो भी आ जाती है। जो इज्जतों की हिफाजतें करने वाली होती है वो इस तरह अपने आप को आजाद नहीं छोड़ती। अल्लाह अकबर। तो कितना बड़ा मकाम होगा सूरह हजरत मरियम का कि अंबिया के जिक्र के साथ इनका जिक्र आया, हालांकि ये कोई नबिया नहीं है, कोई औरत नबी नहीं हुई। इन हादी उम्मतुकुम उम्मत वाहिदा, ये है तुम्हारी उम्मत एक उम्मत। ये सारी जो पैगंबरों की उम्मत है ना, ये एक उम्मत है। उम्मत वो होती है जिनका नजरिया एक हो, ठीक है, किसी एक नजरिए के ऊपर वो मुत्तहिद हो, उनको उम्मत कहते हैं। तो ये एक उम्मत है, इन सब का दीन एक था और वो तौहीद है, इनका नजरिया एक था तौहीद का नजरिया। वह अना रब्बुकुम फाबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूं बस इबादत करो मेरी, यही उनका दीन था, यही सबका पैगाम था, यही सबकी एक ही बात थी। तो चाहे वो किसी भी जमाने में आए, वो एक उम्मत है। और इसी तरह उम्मत मुस्लिमा भी एक उम्मत है, ये नहीं कि उनका रंग एक है या उनके एक ही इलाके से बिलोंग करते, उनका नजरिया एक है और वो है तौहीद। तो लेकिन क्या लोगों ने क्या किया, वह तकत्ताउ अमरहुम बैनहुम, लोगों ने क्या किया कि अपने मामले को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अपने दीन को टुकड़े टुकड़े, यानी पिछली तारीख की बात हो रही है कि सब एक ही उम्मत थे, लेकिन लोग लोग बन गए, ईसाई कोई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई मजूसी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, सब ने अपने अपने टुकड़ियां कर ली, हालांकि उम्मत तो एक थी। और विद इन उम्मत आज हमारी कितनी टुकड़ियां और कितने हमने फिरके बनाए में, अल्लाह ताला को ये फिरकाबाजी नहीं पसंद, ये फिरके फिरके बना के बैठे। चाहे वो फिरकाबाजी किसी मुसलमान को तो कहा गया कि ये एक जिस्म की माने है, एक जिसे को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ होती। आप दीन की में टुकड़े टुकड़े करें, चाहे किस चीज में भी करें, वो भी कोई पसंदीदा नहीं है चीज। चाहे आप सियासी तौर पर तकसीम हो रहे हैं, इलाकों के तौर पे तकसीम हो जाए, फलाने इलाके का है वो फलाने इलाके का, ये फलां जुबान बोलने वाला है वो फलां जुबान बोलने वाला, हम इनसे अच्छे हैं वो हम इनसे ज्यादा बेहतर हैं, हम इनसे ज्यादा ज्यादा वैल्यूबल हैं, हम इनसे ज्यादा बड़ी शान वाले हैं। ये सारी चीजें अपने आप को तकसीम करना ना, इलाकों में, सियासी तौर पर, मसलकी तौर पर, या जुबानों की बेस के ऊपर ये टुकड़ियां बनाना है इस उम्मत की, ये बात अच्छी नहीं है। ये एक उम्मत है। अगर पिछले लोगों ने तारीख में उठा के देखी ना, उन्होंने भी यही किया और आज इस उम्मत में भी यही है, यही कर रही है। और सिर्फ दीन की बेस पे नहीं, हर तरह से ही अपने टुकड़े कर लिए। हालांकि अल्लाह ताला ने तो एक ही दीन, एक ही उम्मत बना के भेजा था। और आप देख लें, पहले हाजिर का सीगा था कि उम्मतुकुम, तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, और उसके बाद गायब है। और तकतो अमरा हुम, थर्ड पर्सन गायब का सीगा आ गया। ये हाजिर से जब गायब की तरफ जाना होता है ना, तो इसमें दूरी की तरफ इशारा है। एक है ना हाजिर है और एक गायब है, दूरी का। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है, टुकड़े करना, जब सारे अंबिया एक ही दीन की बात लेकर है। और फिर इस उम्मत में भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, लेकिन फिर भी इतने टुकड़े। तो ये जो सीवे का बदलना है, प्रोनाउन का बदलना है, ये भी दूरी और नापसंदीदगी, नाराजगी, इसकी अलामत है। हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, लेकिन उसके बाद उसके वालदैन हदीस में आता है ना, उसको ईसाई, यहूदी या कुछ भी बना देते। तो ये ग्रोहबंदियां उन्होंने नहीं भी की, उम्मत मुस्लिमा भी आज उसी ढंग पे चल रही है। कुल्लू इलैना राजिऊन, लेकिन सबको हमारी ही तरफ लौट के आना है। क्या मतलब है इस बात? अल्लाह ताला ही फैसला कर देगा ये जो टुकड़े टुकड़े बनाए हुए हैं। और हर कोई कहता है कि हम बस सबसे अच्छे हम ही हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। तफरके में ना पड़ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से तान लो। जब एक जो कॉमन एक चीज है ना, उसी को सबने नहीं पकड़ना, तो फिर जाहिर है टुकड़ियां ही होंगी ना। एक कुरान है अगर उसको पकड़ ले, एक अल्लाह की बात है, एक रसूल की बात है। बाज लोग तो इसीलिए वो बहुत आराम से बैठ जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आती कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए हम तो दीन की तरफ आते ही नहीं। आप कुछ कहता है, कुछ कहता है, उसकी तरफ जाए ही ना ना, आप एक अल्लाह रसूल बोलो, आपकी बात को ले बस। वमई आमल मिना सोलिहाती वाह मोमिन, अल्लाह तला की तरफ जब जाना है तो दो ही काम होने, या तो कोई नेक अमल करके लाएगा, तो फरमाया जो भी मीना सालेहात, जो अमल करे सालेहात में से, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि उसने सारी नेकियां कर ली, बल्कि नेकी में से कुछ भी कर लेता है, थोड़ी नेकियां भी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी है उनकी नेकियों में से। लेकिन जाहिर है हर एक इंसान सारी नेकियां तो नहीं कर सकता, लेकिन नेकी में से कुछ कर लेता है। हाँ ये जरूर है, बागी नहीं है वो अल्लाह का, अल्लाह का मुजरिम बन के जिंदगी नहीं गुजारता, गफलत में नहीं गुजार रहा। हाँ मैं सारी ने किया नहीं कर पाता, उसकी इतनी सक्कत नहीं, मगर उसका फोकस क्या, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी। जितना नेकी में से वो कर पाता है, वो करता है, कोशिश करता है और मुसलसल करता है और इसी हालत में रहता है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है ना, कि अल्लाह ताला ने सारी नेकियां नहीं डिमांड की कि सारी करके ले आना, पर जितना आपके पास इल्म है इतनी अमल की कोशिश करते रहें, बस पिक एंड चूज ना करेंगे ये करूंगी ये नहीं करूंगी। और वो ईमान वाला भी हो, वह मोमिन फला कुफरान लिसाई, तो याद रखना अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, अल्लाह ना कदरी नहीं करेगा इसकी कोशिश की। अल्लाह ताला इंसानों की तरह नहीं है कि वो जो इतना भी किसी के लिए कर लो और उसके बाद भी कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, ऐसे नहीं अल्लाह ताला करता, वो बड़ा ही कदरदान है। इन्ना लहू कातिबून, और बेशक हम उसके लिए लिखने वाले हैं। क्यों लिखा जा रहा है? वो तो नेकियां कर रहा है, इसलिए कि कयामत के दिन उसको ऑनर दिया जाए, इसलिए कि कयामत के दिन लोगों के सामने दिखाया जाए, और फिर वो कहेगा ना मुकराओ किताबिया, ये देखो मेरी किताब, आओ पढ़ो मेरी किताब, लोगों मुझे पता था कि एक हिसाब किताब का दिन आना है। वो प्राउड हो उस दिन अपनी नेकियों को दिखा दिखा के, वो खुश हो, उसकी उसका उसके लिए बड़ा एजाज हो कि नेकियां करके आया है। वह हराम अला करियतिन अहलकनाहा, और हराम है यानी लाजिम है ये करिया पे। इसके तीन माने, एक तो मतलब ये है कि ममनू है, नामुमकिन है, नामुमकिन है क्या अला करियतिन अहलकनाहा, उस करिया पे उस बस्ती के लिए के जिसको हमने हलाक किया, अन्नहुम ला यरजून, कि वो नहीं वापस लौटेंगे, वो नहीं आएंगे वापस। ये लिया पे ला जो है ना जायदा है, इसको ला जायदा कहते हैं, यानी ये किसके लिए, नफी में ताकीद पैदा करने के लिए, वो कभी भी नहीं वापस आ सकते। एक ये माना हो गया, ठीक है। नंबर टू, वो बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया, नामुमकिन है कि हमारी तरफ आखरत में वो ना आए, ये नहीं हो सकता कि वो कभी आखरत में हमारी तरफ लौट के ही ना आए। आगे पीछे आया ना कुल्लू नहीं ना रोजे आऊन, सारे हमारी तरफ लौटने वाले हैं, ये नहीं मुमकिन है कि वो हमारे पास आए ही ना और गायब ही हो जाए। और तीसरा माना यह है कि हराम है, यानी वाजिब के माने में लिया गया ना, कि वाजिब है, लाजिम है कि जिनको अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया वो वापिस नहीं आ सकते दुनिया में, दुनिया में नहीं आ सकते। बाद ने ये भी माना किया कि जो जिनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, यानी उनके नक्शे कदम पे जो चलने वाली है ना, जो पिछली तबाहशुदा कौमें हैं, जो उनके नक्शे कदम पे चल पड़े वैसे ही काम कर रहे हैं, जिनको हमने तबाह किया था उनके जैसे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला फिर तौफीक छीन लेता है कि वो वापस आए अल्लाह की तरफ। पढ़ते कब तक नहीं अल्लाह ताला इनको उठाएगा, यानी ये जो हलाक होने वाली बस्ती है ये कभी दोबारा नहीं उठ सकती, ये कभी नहीं पलट सकती, जब तक कि हत्ता इजाफती हतिया जूजू व माजूज, हत्ता के खोल दिए जाएं याजूज और माजूज। और याजूज माजूज कब खोले जाएंगे, कुर्बे कयामत पे खोले जाएंगे, जब वो खोले जाएंगे तो ये बस्तियां उठाई जाएंगी। और वो तो याजूज माजूज वहम मिन कुल्ली हद अभियान से लून, और वो हर ऊंचाई से नीचे आ रहे होंगे। इनकी बहुत डिटेल में हमने सूरह कहफ में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। याजूज और माजूज कोई एलियंस नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, बल्कि कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से है। और आपको पता है ज़ुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी उसके पीछे इनको बंद कर दिया है। अब ये अल्लाह ताला का जब फैसला होगा, और सूरह कहफ में हम ये पढ़ते भी हैं कि ज़ुल्करनैन ने ही फरमाया था कि जब अल्लाह के वादे का वक्त आएगा तो ये दीवार खत्म हो जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याजूज माजूज खोले जाएंगे और वो लोगों के पास फिर पहुंच जाएंगे, और हर एक ऊंचाई से नीचे आएंगे, छा जाएंगे वो, और मुसलमान अपने शहरों और किलों में सिमट आएंगे, अपने जानवरों को भी वहीं ले लेंगे और अपना पानी इन्हें पिलाते रहेंगे। याजूज माजूज जिस नहर से गुजरेंगे उसका पानी साफ चाट लेंगे, सफा चट कर देंगे। और यहां तक के जिन नहरों से गुजरेंगे तो वहां पे खाक उड़ने लगेगी, जो पहली जमात गुजरेगी वो पानी पिएगी, और जो दूसरी इनके पीछे आएगी ना एंड वाले आएंगे, वो जब वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पे पानी हुआ करता था, इतना वो उसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे, और फिर इतना फसाद करेंगे, इतना खून खराबा करेंगे ये दुनिया के अंदर। और ये कब आएंगे, हमें हदीस से जो पता चलता है कि ये दज्जाल के बाद आएंगे, जब दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम का, अब देख ले कि दज्जाल के आने का भी हमें पता चलता है, याजूज माजूज का भी पता चलता है, लेकिन बाज लोग ईसा अलैहिस्सलाम के आने को नहीं मानते, तो दज्जाल को कत्ल कौन करेगा ये बताएं। और उसके बाद ये याजूज माजूज ने आना है, तो इनके बारे में भी बद्दुआ ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, वो मोमिनों को लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे, इसलिए कि ये इतना खून खराबा और फसाद कर रहे होंगे कि कोई जगह भी नहीं रह जाएगी जो इनके शर से पाक हो। ये तो ये हाल करेंगे कि आसमान की तरफ ना एंड में आसमान की तरफ नेजे फेंकेंगे और कहेंगे आसमान से नीचे वो खून आलूद होके गिरेंगे ना, तो ये कहेंगे देखो हमने दुनिया वालों के ऊपर भी हमने उनको मतलब खत्म कर दिया, और अब आसमान वाले को भी हमने खत्म कर दिया। आसमान वालों की भी पहले उन्होंने सोचा कि ये ऊपर को हम भेज रहे हैं तीर या नेजे, तो ये आसमान वालों को भी हमने मार दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होंगे, बस और क्या है। तो ईसा अलैहि सलाम मुसलमानों को लेकर फिर पहाड़ों में जाएंगे, और इतनी तंगी होगी और वो इतनी ये बड़ी आजमाइश होंगे कि वो वहां पे अपनी जानें बचाने के लिए जाके छुप जाएंगे, और फिर ईसा अलैहि सलाम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनसे निजात दे, और फिर अल्लाह ताला इन याजूज और माजूज के गलों के अंदर, गर्दनों के अंदर
एक गुठली हो जाएगी और इससे ये सारे मर जाएंगे, एक भी इनमें से बाकी नहीं रहेगा। और जो इन्होंने शोर मचाया होगा ना जमीन पे, वो सब खत्म हो जाएगा। मुसलमान कहेंगे जो छुपे होंगे, और कोई रह ही नहीं जाएगा दुनिया में, वो जो छुपे हुए बेचारे वो अपनी जान बचा के ईसा अलैहि सलाम के साथ, सिर्फ वो रह गए। वो कहेंगे कि भाई कोई जाके देख के तो आए कि क्या बाहर हो रहा है, कोई खबर लेकर आए। तो एक मुसलमान उनमें से तैयार होगा, वो भी जान हथेली पे रख के, वो भी सोचेगा कि अब बस मैं गया तो अब अपने आप को समझ लेगा कि मैंने वापस नहीं आना, मैं अब गया तो खत्म हूं मैं। लेकिन जब वो जाके देखेगा तो इनके ढेर लगे होंगे, इनकी लाशों के सारे खत्म हो गए होंगे। तो वो फिर पुकारेगा वहां से, मुसलमानों खुश हो जाओ, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों को गारत कर दी। तो मुसलमान फिर निकल के आएंगे, अपने मवेशियों को भी लाएंगे, और फिर ये इतनी जगहों पे ये इनकी सड़ांध होगी इनकी लाशों की, और इस तरह अल्लाह ताला फिर एक बारिश भेजेगा और फिर उससे इनका सफाया होगा, इनको बहा के ले जाएगी, और परिंदे आएंगे और इनको इनकी लाशों को उठा के ले जाएंगे। तो ये सब अहादीस से हमें पता चलता है, और ये हमें पता चलता है कि ये आखिर के टाइम में आएंगे। इतना आखिर का टाइम होगा, जब मेराज वाली रात पे भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और ईसा अलैहि सलाम ने से उन कयामत का के बारे में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने फरमाया था कि इसके वाकई होने के वक्त को तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, मुझसे मेरे अल्लाह ने ये फरमाया कि दिज्जाल निकलने वाला है और उसके साथ दो टहनियां होंगी, वो मुझे देखते ही शीशे की तरह पिघलने लगेगा। इसका मतलब ईसा अलैहि सलाम आएंगे ही तो फिर होगा ना। ये सारी ये हदीसें इतनी तवातुर के साथ हैं, फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि वो सारी इन हदीसों का इनकार कर देते हैं। तो फिर वो फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उसको हलाक करेगा जब वो मुझे देखेगा, तो उस वक्त फिर ऐसे हो जाएगा जैसे नमक पानी में डाल दे पिघलने लगता है ना, इस तरह हो जाएगा ईसा अलैहि सलाम को देख के। फिर उन्होंने नहीं बताया कि उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे, फिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, फिर अल्लाह ताला उनको खत्म करेगा। और फिर फरमाया कि जब मेरे रब ने मुझे फरमा दिया कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर कयामत का आना इतना करीब होगा, इतना करीब होगा जैसे पूरे दिनों वाली हमल वाली औरत को 9 महीने औरत के हो जाए, तो उसके बाद घर वालों को यही फिक्र होती है ना कि अभी सुबह को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल या शाम को, इस तरह की हालत, इतनी करीब होगी कयामत। और जैसे कि मैं आपको बताया कि याजूज माजूज तो वो उस दीवार को खोद देंगे, या खोद रहे हैं और खोदते जा रहे हैं, और उसमें इतना सुराख भी हो गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी था, बयान फरमाया था कि इतना उन्होंने सुराख कर लिया, अपने वक्त में बता दिया था। और इनकी कुदालों की आवाज जो है ना, वो पास वाले भी सुनेंगे, जो ये जब दीवार को ऐसे खोदते हैं तो पास वाले भी सुनेंगे, रात हो जाएगी। उनमें से ये काब रहमतुल्लाह का कॉल है कि जब निकलने वक्त ये दीवार को खोदेंगे तो एक कहेगा कि सुबह को अब इसको खोद दे, और सुबह ही आएंगे तो जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएंगे, इस तरह ही होता रहेगा जब तक कुर्बे कयामत नहीं आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म होगा ना, उसको मंजूर होगा, तब उनमें से एक बंदे की जुबान से निकलेगा कि हम कल इनशाला इसको तोड़ देंगे। इनशाला भी कितना इंपॉर्टेंट है सोचे। तो अब जब ये आएंगे तो फिर देखेंगे कि दीवार जितनी कल खोदी थी उतनी ही है और वापस नहीं बनी। तो इनके बारे में चूंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बस ये वक्त होगा कि बहुत बलाएं होंगी, बहुत आफतें होंगी कुर्बे कयामत के बाद। वक्त तरब الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا, जब करीब आ जाएगा वादे का वक्त, तो तब वो जो काफिर हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। यानी उस वक्त जब कयामत का वक्त करीब आ जाएगा, कयामत का वादा सच हो जाएगा, कयामत की जो निशानियां पूरी हो गई और कयामत आ चुकेगी, यानी जो इसके जो सूर फूंक दिया जाएगा, उस वक्त के हालात हैं कि उस वक्त जब वो सामने देख लेंगे ना इस वादे को, वादा जो सच्चा वादा है, उसकी चीजें देख लेंगे। अब सूर फूंका गया है, घबराहट हो गई है, लोग भाग रहे हैं, सितारे झड़ रहे हैं, सूरज मांद पड़ गया है, समुद्रों में आग लग गई है। अब जब ये काफिर देखेंगे ना, तो वो तो फिर इतने खौफजदा हो जाएंगे और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ये हो क्या रहा। पहले तो कयामत का यकीन नहीं करते थे, अब यकीन आ जाएगा, कहेंगे या वही लाना कद कुन्ना फी गफलत मिन हादा बल कुन्ना तौली। हाय अफसोस हम पे, हम तो गफलत में ही रहे इससे, नहीं अपने आप को मलामत करेंगे, हाय ये क्या हो गया, हम गफलत में रहे इससे, हादा इशारा करीब का है, यानी वो सामने अपने देख रहे होगे ना, कयामत सामने होगी, अब हद दर्जा अफसोस से कहेंगे हमने कैसे इसको इग्नोर कर दिया, इससे हम गाफिल रहे। सोचे अल्फाज में ही कितना पछतावा है, हालांकि अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह ताला के आगे पेश भी नहीं हुए, अभी तो सिर्फ कयामत का मंजर ही देख रहे हैं ना, उस वक्त ही कह रहे हैं हाय हम ही जालिम, हाय हमने, इसका मतलब है कि वहां पे जाके कोई ये नहीं कह सकेगा मैंने क्या गलत किया था, मुझे क्यों जहन्नुम में डाला जा रहा है, मैं तो बड़ी अच्छी थी, ऐसे नहीं कहेगा वो, खुद उनको पता होगा कि हमने गलत किया है, वो ये नहीं कहेंगे हमारे साथ जुल्म हो गया जी, यहाँ पे कोई हार जाए इलेक्शन तो कहता है हमारे साथ जुल्म हो गया, ना इंसाफी हो गई, धांधली हो गई, वहां पे कोई नहीं कहेगा धांधली हो गई, मानेंगे हम जालिम थे, हमने खता की, हमने ही गलत किया है। और इसे पता चलता है कि इंसान की ना आंखें असल में उस वक्त ही खुलेंगी, कहीं कि इस दुनिया में ही खुल जाती हैं, कैसे जैसे हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं जन्नत को देख भी लूं तो मेरे यकीन में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि ऑलरेडी जितना यकीन है ऐसे ही है जैसे सामने अभी भी देख रहे हैं, और जहन्नुम को देख भी लूं तो मुझे जरा भी मेरे यकीन के अंदर फर्क नहीं आएगा, उनको यहीं पे वैसा यकीन होता है जैसे लोगों को देख के होता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनको दुनिया के अंदर तो यकीन होता नहीं, जब चीजें को देखेंगे तो तब अब होगा हाय ये क्या हो गया, हमने गफलत में इतना वक्त गुजार दिया, जैसे शुरू हुई ये सूरत तब भी यही बात थी, लोगों का हिसाब का वक्त करीब आ गया, इनकी गफलत ही नहीं खत्म होती, ये पता नहीं किधर गुम है, तो वो जो गुम है ना वो सब ठिकाने आ जाएंगे जिस वक्त कयामत को सामने देखेंगे, अब नहीं कुछ याद रहना, वो जो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, जॉब्स थी, बिजनेसेस थे, अपनी लुक्स थी, कपड़े थे, जेवर था, वो सब इतने इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, मैं जो कहती हूँ कयामत को तो देखना बाद की बात है, इंसान को अपनी मौत का ही पता चल जाए ना, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर दे, बास बीमारियां ऐसी होती हैं कि डॉक्टर कह देते हैं अब आपके पास कोई टाइम नहीं रह गया, अब बीमारी खा चुकी है आपको, इतना आपके पास वक्त होगा ज्यादा सा, उस वक्त ही सब चीज गैर अहम हो जाती है, वो जो कपड़े इतने पड़े हुए हैं, वार्डरोब्स भरी पड़ी हैं, वो सारी बिल्कुल बेकार लगने लगते हैं, वो जो जेवर सारा लॉकर में रखा है वो भी बेकार लगने लगता है, जॉब भी बेकार लगने लगती, सब चीजें बेकार हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे जीरो है, उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती। अल्लाह हू अकबर, हम ही जालिम थे, हम ही जालिम थे, अब ये बात याद आ रही है, दुनिया में नहीं कहते थे इन्ना कुन्ना तौलिमीन, ये नहीं कहते थे, अब देख के कह रहे हैं, और जो नेक लोग होते हैं तो वो तो यही कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।